चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमोः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा। तो दूसरा स्कंद दूसरा कैंटो शुरू करने से पहले हम पहले स्कंद का फर्स्ट कैंटो का ओवरव्यू देखेंगे, फुल एक एक अध्याय का कैसे एक एक अध्याय कनेक्टेड है, पूरे कैंटो का ओवरव्यू। तो अगर किसी ने काफ़ी सारे क्लासेस मिस किया है पर ये अगले दो तीन सेशंस में ये पूरा फर्स्ट कैंटो में सार में सारांश में क्या है समझ में आ जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो ये पहला स्कंद में फर्स्ट कैंटो में 19 अध्याय हैं, 19 चैप्टर्स। तो ये तीन सेक्शन में बटा है पूरा जो पहला स्कंद है, थ्री पार्ट्स। पार्ट वन पहला तीन चैप्टर पार्ट वन में आता है जिसमें सुत गोस्वामी छह प्रश्न पूछते हैं, शौनकादि ऋषि छह प्रश्न पूछते हैं और सुत गोस्वामी ये छह प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये पहले स्कंद का पहला तीन अध्याय हो गया, फर्स्ट पार्ट। सो पार्ट ए ऑफ फर्स्ट कैंटो इज द फर्स्ट थ्री चैप्टर्स, पहले तीन अध्याय, जहाँ पे शौनकादि ऋषि छह प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी को और सुत गोस्वामी ये छह प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसके बाद चौथे अध्याय के शुरुआत में ही शौनकादि ऋषि और एक प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न पे अगले बाकी का पूरा स्कंद निर्भर है। उनका प्रश्न क्या है, वो पूछते हैं व्यासदेव को भागवतम लिखने का प्रेरणा कब मिला, कहाँ पे लिखा उन्होंने। दूसरा प्रश्न उनका है हम परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, उनके कार्य के बारे में सुनना चाहते हैं। और तीसरा है हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनना चाहते हैं और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित कैसे मिले, ये प्रश्न है उनका चौथे अध्याय के शुरुआत में। तो पार्ट बी, तो मैंने बताया कि पहले स्कंद का तीन सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट थ्री चैप्टर्स, जहाँ पे शौनकादि ऋषि छह प्रश्न पूछते हैं और सुत गोस्वामी छह प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरा जो सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का इतिहास। तो इसमें तीन अध्याय आता है, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय और सातवां अध्याय, सॉरी चार अध्याय आता है। इसमें व्यासदेव के कार्य हैं, व्यासदेव के एक्टिविटीज, बाद में नारद मुनि कैसे व्यासदेव को मिलते हैं और नारद मुनि की जिंदगी के बारे में, नारद मुनि भक्त कैसे बनते हैं और व्यासदेव का जो उपदेश देते हैं उसके बारे में वर्णन है, और फाइनली वो उपदेश लेके व्यासदेव भागवतम लिखते हैं। तो ये शौनकादि ऋषि का एक प्रश्न था कि व्यासदेव को प्रेरणा कहाँ से मिला, वो समझाने के लिए वो व्यासदेव का कार्य समझाते हैं। नारद मुनि और व्यासदेव का जो संवाद है उसका वर्णन आता है, नारद मुनि का जिंदगी का वर्णन आता है, और बाद में व्यासदेव कैसे भागवतम लिखते हैं। दिस इज पार्ट बी, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। तो दिस इज ये चौथा अध्याय से सातवां अध्याय। तो उसके बाद सातवें अध्याय से उन्नीसवां अध्याय किसके बारे में है? परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, कार्य के बारे में, और सुखदेव गोस्वामी कैसे परीक्षित से मिलते हैं। तो परीक्षित का दिस इज पार्ट सी, द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट कैंटो इज चैप्टर 7, सातवें अध्याय से सीधा 19वें अध्याय तक, टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट कैंटो। तो परीक्षित के जन्म के बारे में बताने के लिए सुत गोस्वामी पीछे जाते हैं, रिवाइंड करते हैं। तो कहाँ से शुरू करते हैं? सातवें अध्याय में कैसे अश्वत्थामा का दंड मिलता है, अश्वत्थामा को कैसे अर्जुन दंड देते हैं। अश्वत्थामा जब अर्जुन के पांडवों के पांच पुत्र को मारता है उसका वर्णन आता है सातवें अध्याय में, अश्वत्थामास पनिशमेंट। आठवें अध्याय में फिर से अश्वत्थामा परीक्षित को मारने के लिए, जो उत्तरा के गर्भ में है, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और कृष्ण जाके परीक्षित को बचाते हैं। उसके बाद अभी कृष्ण निकलने वाले हैं हस्तिनापुर से, तब कुंती देवी आती है और कुंती महारानी उनका प्रार्थना अर्पण करती है। तो वो आठवां अध्याय हो गया, कुंती स्प्रेयर, ठीक है, अभी कुंती का प्रार्थना हो गया। उसके बाद नौवें अध्याय में भीष्मदेव कैसे उनका शरीर त्यागते हैं, डिपार्चर ऑफ भीष्मदेव। उसके बाद कैसे कृष्ण, चैप्टर 10, कैसे कृष्ण द्वार हस्तिनापुर से निकलते हैं उसका वर्णन है, डिपार्चर ऑफ कृष्णा फ्रॉम हस्तिनापुर। और 11वें अध्याय में कैसे कृष्ण द्वारका में एंट्री करते हैं, एंट्रेंस ऑफ कृष्णा इन द्वारका। तो ये सब क्यों बता रहे हैं सुत गोस्वामी? क्योंकि परीक्षित का जन्म के बारे में बताने के लिए अलग अलग सीन्स बिल्ड कर रहे हैं। तो पहले अश्वत्थामा का दंड के बारे में वर्णन आता है, बाद में कुंती महारानी का प्रार्थना, भीष्मदेव कैसे शरीर त्यागते हैं उनका प्रार्थना, बाद में कृष्ण कैसे हस्तिनापुर से निकलते हैं द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ तक 11 अध्याय हो गया, चैप्टर 11। 12वां अध्याय परीक्षित के जन्म के बारे में है, परीक्षित का जन्म कैसे होता है और अलग अलग ब्राह्मण उनके गुण के बारे में क्या क्या बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो 12वां अध्याय है। उसके बाद अभी परीक्षित का जन्म तो हो गया, अभी परीक्षित को राजा बनना है। तो राजा बनने के लिए और एक दो हिस्ट्री है, इतिहास समझना है। वो क्या है? कैसे धृतराष्ट्र अपना ग्रह त्याग करते हैं और वैराग्य का जीवन स्वीकार करते हैं। तो वो है 13वां अध्याय, विदुरा एनलाइटन्स धृतराष्ट्र, कैसे विदुर धृतराष्ट्र को आके उपदेश देते हैं, तो वो अध्याय है। उसके बाद 14 चैप्टर, कैसे कृष्ण का ये दुनिया से कृष्ण का डिसअपीयरेंस होता है, कृष्ण ये दुनिया से जाते हैं और भगवत धाम वापस जाते हैं, तो उसका अध्याय 14 चैप्टर है, डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उसके बाद अगला अध्याय कौन सा है? 15th, भाई कृष्ण चले गए तो अगला अध्याय है युधिष्ठिर और पांडव भी घर छोड़ के, उनका महल छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी कृष्ण नहीं है तो हमको रह के फायदा ही नहीं है। तो 15 चैप्टर इज युधिष्ठिर रिटायर्स एंड पांडवास रिटायर टाइमली, वो अध्याय का नाम है। कैसे पांडव वापस हिमालय की ओर जाते हैं और उनका जो सर्वोच्च गति है वो प्राप्त करते हैं। तो वो जाने से पहले परीक्षित को राजा बना के जाते हैं, दे एनथ्रोन परीक्षित। तो यहाँ तक सुत गोस्वामी ने परीक्षित के जन्म के बारे में बताया, परीक्षित कैसे राजा बन जाते हैं अभी। तो यहाँ तक 15 अध्याय हो गया, चैप्टर 15। चैप्टर 16 और 17, 16 और 17 अध्याय क्या है? परीक्षित के राज्य के बारे में, उनके कार्य के बारे में, कैसे परीक्षित उनके पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं और वो कैसे कली को मिलते हैं और कली को दंड देते हैं, धर्म और धरती के बीच में, ये गाय और बैल के बीच में जो संवाद है, कली का और परीक्षित के साथ संवाद, वो सब वर्णन आता है 16 एंड 17 चैप्टर्स। तो ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि शौनकादि ऋषि ने सुत गोस्वामी को परीक्षित के कार्य के बारे में भी पूछा था, तो 16, 17। तो फाइनली 18 चैप्टर है कि कैसे परीक्षित को श्राप मिलता है श्रृंगी से, एक बार वन में जाते हैं और उनको प्यास लगता है, वो शमिक ऋषि के गले पे सर्प बांध देते हैं और श्रृंगी श्राप देता है। सो परीक्षित कर्स्ड बाय अ ब्राह्मणा बॉय, चैप्टर 18। एंड फाइनली द लास्ट चैप्टर, ये स्कंद का अंतिम अध्याय, मीटिंग ऑफ सुखदेव गोस्वामी। कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को आके मिलते हैं। तो ऐसे ये पूरा स्कंद ओवरव्यू है, 5-10 मिनट में ओवरव्यू। सो इन एसेंस, सारांश में, ये स्कंद में 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 पार्ट ए, जहाँ पे शौनकादि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं और सुत गोस्वामी ये 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं। दिस इज चैप्टर 1-3। चैप्टर 1-3 ये पार्ट ए है। पार्ट बी है हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का इतिहास, 4th अध्याय से 7th अध्याय, जहाँ पे व्यासदेव कैसे वेद लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, महाभारत लिखते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। उसके बाद कैसे नारद मुनि उनकी ज़िंदगी में आते हैं और नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, और फाइनली व्यासदेव को प्रेरणा मिलता है, भागवतम बैठ के लिखते हैं। दिस इज पार्ट बी, हिस्ट्री, भागवतम के इतिहास, 4th अध्याय से 7th अध्याय। और तो ये पार्ट बी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 4th अध्याय के शुरुआत में शौनकादि ऋषि ने प्रश्न पूछा था, व्यासदेव को प्रेरणा कहाँ से मिला, वो समझाने के लिए 3 अध्याय वर्णन करने हैं सुत गोस्वामी। तो और एक प्रश्न पूछा था उन्होंने कि परीक्षित के जन्म के बारे में, कार्य के बारे में, और उनका सुखदेव गोस्वामी के साथ मिलन कैसा हुआ, तो वो समझाने के लिए पार्ट सी, 3rd सेक्शन ऑफ 1st कैंटो, पहला स्कंद का 3rd पार्ट, 7th अध्याय से सीधा 19th अध्याय, लास्ट अध्याय तक, जहाँ पे परीक्षित के जन्म के बारे में वर्णन आता है। जन्म के बारे में वर्णन करने के लिए अश्वत्थामा का दंड, कुंती महारानी का प्रार्थना, भीष्मदेव के प्रार्थना, कृष्ण कैसे हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं, ये सबका वर्णन आता है। और बाद में परीक्षित का कार्य, कैसे परीक्षित राजा बनते हैं, बाद में उनका कली को दंड देते हैं, और बाद में वो श्राप उनको मिलता है, एंड फाइनली मीटिंग ऑफ सुखदेव गोस्वामी। तो ये द 3rd सेक्शन है, पार्ट सी, 7th अध्याय से सीधा 19th अध्याय, परीक्षित के जन्म, कर्म और उनका सुखदेव गोस्वामी के साथ मिलन। तो दिस इज लाइक एन ओवरव्यू ऑफ 1st कैंटो। तो अभी हम एक एक अध्याय में जाएंगे और एक एक अध्याय में इन 5 मिनट्स, हम एक एक 5-7 मिनट में, हम एक एक अध्याय में ओवरऑल व्यू क्या है देखेंगे। तो अभी हमने पूरा 1st कैंटो का व्यू देख लिया, समझ लिया, अभी एक एक अध्याय में क्या मिलता है हमको, व्हाट आर लाइक द वेरियस सेक्शंस ऑफ एवरी चैप्टर। सो द 1st चैप्टर, पहले स्कंद का पहले अध्याय है, क्वेश्चंस बाय द सेजेस। ये नैमी शरण्य में जो साधु संत हैं प्रश्न पूछते हैं, ये पहला अध्याय है, 1st चैप्टर। तो ये अध्याय में टोटल 23 वर्सेस हैं। तो जो पहले 3 श्लोक हैं, ये भागवतम के, पूरे भागवतम के 1st 3 श्लोकाज हैं। इसमें पहले श्लोक में जो कृष्ण हैं, भागवतम के जो आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, उनका वर्णन आता है, डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। 1st वर्स, जन्मादि यद् अन्वयादितरश्च चार्तेषु अभिज्ञस्वराट्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भागवतम पूरा किस पे निर्भर है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव कृष्ण पे निर्भर है। तो भागवतम का आराध्य देव कौन है, वासुदेव कृष्ण, इसलिए पहले श्लोक में ही वर्णन आ रहा है। ये पूरा भागवतम किस पे निर्भर है, भगवान पे निर्भर है, और भगवान का नाम क्या है, वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र है। तो ये पहला श्लोक है, डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। दूसरा श्लोक है जहाँ पे भागवतम का गुणगान होता है, धर्म प्रवचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराना सताम, कि कैसे है भागवतम, क्या है धर्म प्रवचित कैतवत्रो, कि बाकी जो नीचे के धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो नीचे के धर्म है उसको भागवतम तिरस्कार करता है, और परमो निर्मत सराम सताम, तो परम धर्म के बारे में बोलता है, सबसे ऊंचा धर्म, और इस तरह से भागवतम का गुणगान आता है। तीसरे श्लोक में वर्णन आता है कि क्यों भागवतम, जैसे कुछ भी पुस्तक किसी को पढ़ने के लिए एक प्रेरणा चाहिए, मुझे इसमें क्या मिलेगा। तो बोलते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकद मुकात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम बुहो रहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवतम क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अगर पूरा वेद एक कल्पतरोर की तरह है, पेड़ की तरह है, भागवतम क्या है? गलितम फलम, पका हुआ फल। और पके हुए फल को जब ऑलरेडी स्वादिष्ट रहता है, पर तोता अगर मूर डालता है ये पके हुए फल को, तो जानना चाहिए सबसे स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे तोता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। शुक मुकाद तो और मीठा हो चुका है, इसलिए इनविटेशन है, ये हम सबको आमंत्रण है, ये भागवतम आप पीए। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत मतलब इसका पान कीजिए भागवतम का। तो इस तरफ से ये प्रिल्यूड है, पहला तीन श्लोक का बिल्डअप करता है भागवतम के लिए। तो उसके बाद वर्णन आता है कि श्लोका 4-8 जिसमें शौनक आदि ऋषि सीन सेट हो रहा है ये भागवतम का। एक बार नैमिषारण्य करके एक जगह में उपस्थित हुए हैं 1000 साल का यज्ञ करने के लिए, डूइंग यज्ञ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। क्यों? भगवान की संतुष्टि के लिए और लोगों का हित, क्योंकि उनको पता है अभी कलयुग शुरू हो रहे हैं, तो आगे जाके कलयुग के लोगों के लिए हमको हित करना है, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। नैमिषारण्य क्यों? स्थान का बहुत महत्व है, क्योंकि नैमिषारण्य बताया जाता है पूरे ब्रह्मांड का सेंट्रल पॉइंट है नैमिषारण्य। जो भी नैमिषारण्य में कोई करता है पूरे ब्रह्मांड के लोगों को फायदा मिलता है, तो इसलिए वो चुनते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र रणभूमि, युद्ध तो कहीं पे भी हो सकता था, कुरुक्षेत्र क्यों चुना? क्योंकि कुरुक्षेत्र रणभूमि का महत्व था कि जो भी वहाँ पे मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए युद्ध भूमि भी चुना कुरुक्षेत्र का। तो वैसे ही नैमिषारण्य में आते हैं ताकि ये जो यज्ञ है उनके लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बहुत सारे समय तक, पीढ़ी पीढ़ी तक फायदा मिले। तो ये यज्ञ में, श्रवण यज्ञ में वो सुत गोस्वामी को आसन देते हैं कथा बोलने के लिए, और सुत गोस्वामी का गुणगान करते हैं। और बाद में ये अध्याय अंत होता है चैप्टर 9-13 जहाँ पे शौनक आदि ऋषि पहले तो कलयुग के लोगों का कंडीशन बता रहे हैं। प्रायेन अल्प आयुष्य सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, कि कैसे कलयुग के लोगों का आयु कम है, बुद्धि कम है, तो इसलिए आप कलयुग के लोगों का हित के लिए हमको कुछ भागवतम बताइए, कुछ सोल्यूशन बताइए। और इस तरह से वो 6 प्रश्न पूछते हैं। दिस इज लाइक द फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय इसमें एंड होता है। ये 6 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल, लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए सबसे ऊंचा मंगलमय कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सब शास्त्रों के निचोड़ सार बताइए। क्योंकि कलयुग का लक्षण ये प्रश्न पूछने से पहले 11वें श्लोक में आता है, इसके पहले उन्होंने कलयुग के लक्षण बता दिया था, प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयोर मंद भागी उपद्रता। कलयुग के लोगों के पास समय भी नहीं है, आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है, भाग्य भी कम है, तो इसलिए एसेंस सारांश बता दीजिए बस। बड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ने को बोलेंगे कलयुग के लोगों को समझ में नहीं आने वाला, इसलिए उनका दूसरा प्रश्न है सब शास्त्रों का निचोड़ एसेंस। उनका तीसरा प्रश्न है, व्हाई डिड द लॉर्ड अपियर इन द वूम्ब ऑफ देवकी एज द सन ऑफ वसुदेव, तो कृष्ण देवकी के गर्भ में वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आए ये धरती में, कृष्ण के आगमन का कारण, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, हम कृष्ण के पुरुष अवतार के बारे में सुनना चाहते हैं विस्तार से, वो चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, हम कृष्ण के लीला अवतारों के बारे में सुनना चाहते हैं, अलग अलग जो भगवान के अवतार हुए हैं, 5th question। एंड फाइनली 6th question, होम डिड द रिलीजियस प्रिंसिपल टेक शेल्टर ऑफ आफ्टर लॉर्ड कृष्णास डिपार्चर, तो कृष्ण जब ये धरती छोड़ के जाते हैं उनके धाम, तब धर्म किसका आश्रय लेता है। ये 6 प्रश्न हैं पहले अध्याय में। तो दूसरे अध्याय से सुत गोस्वामी बोलने लगते हैं। तो दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो दूसरे अध्याय का शीर्षक है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। तो इसमें पहले तो शुरुआत में पहले पांच श्लोकों में सुत गोस्वामी अभी भागवतम बोल रहे हैं। तो कैसे वक्ता को जो प्रवचन देते हैं उनको भागवतम बोलना चाहिए उसका वर्णन आता है। पहले सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, उनके गुरु को प्रणाम करते हैं, व्यासदेव को प्रणाम करते हैं, सरस्वती को प्रणाम करते हैं, और सबको प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लेके वो भागवतम बोलना शुरू कर रहे हैं। तो ये कल्चर है। हाँ, जब कोई भागवतम बोलता है उसको पता है कि मैं अपने क्षमता के अनुसार बोल नहीं सकता कृष्ण के बारे में, जो महान लोग हैं उनका मैं माध्यम बन के बोलूँगा। जैसे एक माइक्रोफोन होता है, माइक होता है, उसका खुद का क्षमता नहीं है, वो जस्ट जो साउंड आ रहा है व्यक्ति और माइक्रोफोन जो बोल रहा है वो वॉइस को एम्पलीफाई करता है, बस उतना ही। तो वैसे ही जो प्रवक्ता है, जो प्रवचन दे रहे हैं, उनको ये भावना होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये गुरु और साधु संत का ज्ञान है और मैं सिर्फ माध्यम हूँ। जैसे एक प्यून होता है, पोस्टल प्यून, उसका काम क्या है, जो लेटर मिला है एज इट इज आके देता है, उसमें उसका कुछ क्रेडिट नहीं है। तो वैसे ही सुत गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से इन सबका आशीर्वाद लेके अपने गुरु वर्ग का भागवतम बोलना प्रारंभ करते हैं। और शुरुआत में वो साधु संत जो हैं, शौनक आदि ऋषि, उनका गुणगान कर रहे हैं। देखिए, पहले स्कंद में जब शौनक आदि ऋषि का अवसर था उन्होंने सुत गोस्वामी का गुणगान किया, अभी सुत गोस्वामी का अवसर है वो इनका गुणगान कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। तो बोलते हैं मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भि लोक मंगलम यत् कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। तो आपका आप सब साधु हैं, मुनय साधु पृष्ठोहम, आप सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपने कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछा है, और कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछने से क्या होगा, ये जो प्रश्न उत्तर है येनात्मा सुप्रसीदति, हर एक व्यक्ति ये प्रश्न उत्तर से संतुष्ट हो जाएगा। तो अगर आपको याद है प्रभुपाद ये तात्पर्य में क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताते हैं कि दुनिया में हर एक व्यक्ति प्रश्न और उत्तर करता है। चिड़िया भी, जो पशु हैं वो भी प्रश्न कर रहे हैं, पर उनका प्रश्न है कि कहाँ आहार मिलेगा, निद्रा मिलेगा, मैथुन मिलेगा, ये उनका प्रश्न है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको प्रश्न पूछना चाहिए, किसके बारे में, कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। इसलिए सुत गोस्वामी इन सबका गुणगान करते हैं। तो उसके बाद अगले दो श्लोक में 6 और 7 सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि का पहले दो प्रश्न का उत्तर देते हैं। उनका पहला दो प्रश्न क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, लोगों के लिए कल्याणमय कार्य क्या है, द अल्टीमेट गुड, सबसे बड़ा कल्याणमय कार्य क्या है। और दूसरा प्रश्न था उनका, सब शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सबसे ऊंचा धर्म क्या है लोगों के लिए। तो उसका उत्तर देते हुए, तो ये दूसरे अध्याय में प्रैक्टिकली बहुत सारे श्लोक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं पूरे भागवतम के। तो वर्णन करते हैं 6 श्लोक में, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतुकी अप्रतियता ययात्मा सुप्रसीदति। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है, सवई पुंसाम परो धर्मो, तो उन्होंने पूछा था लोगों के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है, वो क्या है, यतो भक्तिर अदोक्षजे, कृष्ण का भक्ति करना। और ये भक्ति कैसा होना चाहिए, अहेतुकी अप्रतियता, बिना हेतु के और बिना रुकावट के, ये करने से हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहले दो प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसके बाद सुत गोस्वामी बताते हैं कि कैसे अगर बाकी भी धर्म कर रहे हैं, कोई बोलेगा ठीक है मैं सबसे ऊंचा धर्म नहीं कर रहा हूँ, परो धर्म तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पर बाकी धर्म मैं कर रहा हूँ, मैं अपना गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा हूँ, अपना वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा हूँ, ये उचित नहीं है क्या। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं ठीक है आप बाकी धर्म करो, पर बाकी धर्म का भी सारांश क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो इसलिए दूसरा सेक्शन है 2nd चैप्टर का, ओनली भक्ति इज टू बी गेन्ड बाय वंस प्रिस्क्राइब्ड वर्क। आपके जो रोज के कार्य है, वर्णाश्रम के कार्य है, कि ये भौतिक दुनिया के जो भी कार्य है, उससे भी सफलता क्या है वो कार्य में, अगर आप भक्ति को पाएंगे, नहीं तो वो कार्य का कुछ फायदा नहीं है। धर्म स्वनुस्थित पुंसा विश्वक्षेन कथासुय नोत्पाद यदि यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बोलते हैं कि अगर आप वर्णाश्रम धर्म का भी पालन कर रहे हैं पर उससे आपको भक्ति में रुचि नहीं आ रहा है, भगवान की कथा में रुचि नहीं आ रहा है, तो ऐसा धर्म श्रम एव ही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब है आप बाकी नीचे के धर्म का भी पालन कर रहे हैं, अल्टीमेटली भक्ति का एलिमेंट होना ही पड़ेगा, उससे वो धर्म नहीं तो वो कार्य सफल होंगे ही नहीं। तो इस तरह से अलग अलग वर्णाश्रम धर्म का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है उसके बारे में बताते हैं। अत पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो अगर आपने बाकी भी कार्य किया है उसका टेस्ट क्या है, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, एंड में उसका एग्जाम होता है, उसमें उसको पास करना है। तो अगर आपने वर्णाश्रम धर्म फर्स्ट क्लास किया, सब कुछ किया है, तो आप सक्सेस हैं कि फेलियर है, सफल हैं कि आप विफल हो गए, किस पे निर्भर हैं, संसिद्धिर हरितोषणम। अगर आपने कृष्ण को संतुष्ट किया, टिक, आप पास हो गए। कृष्ण संतुष्ट नहीं है, आपने वर्णाश्रम ही फर्स्ट क्लास किया, फेल हो गए। तो इसलिए बताते हैं कि बाकी धर्म में भी भक्ति सबसे ऊंचा धर्म है, पर आप नीचे का भी धर्म कर रहे हैं, पर भक्ति करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो श्रम एव ही केवलम, इट्स सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो यही सेक्शन में वो भगवान के तीन स्तर बताते हैं। वदंती तत् तत्वविदस् तत्वम यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये जो सबसे ऊंचे जो तत्व है, पर तत्व, वो जानने के लिए तीन स्तर है। ब्रह्मेति, ब्रह्मन का स्तर, जो भगवान का कांति है, भगवान के शरीर से जो शक्ति आती है, रोशनी आता है, वो है। परमात्मा, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, उसके रूप, वो रूप को भगवान का साक्षात्कार होना। और सबसे ऊंचा है भगवान इति शब्दते, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जिनका एक रूप भी है। तो इस तरह से तीन स्तर समझाते हैं। उसके बाद अगला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे है, दिस इज 16-22, कैसे भक्ति शुरुआत होती है। तो अब तक उन्होंने बताया कि हाउ भक्ति इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा धर्म है, सब शास्त्रों का निचोड़ यही है, और लोगों के लिए जो लोगों को सुख चाहिए, जो कल्याण चाहिए, वो सब भक्ति से ही होगा। तो अभी कोई बोलेगा भक्ति के स्तर में प्रगति कैसे होता है, तो हम सब जानते हैं कि भक्ति के स्तर में अलग अलग स्टेप्स है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसे 9 स्तर है। तो ये 9 स्तर में व्यक्ति बढ़ता कैसे है, अगला सेक्शन है 16-22। प्रैक्टिकली हर एक श्लोक इंपॉर्टेंट है। वो बताते हैं, शुश्रूषो श्रद्धदानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो पहला शुरुआत होती है भक्ति कहाँ से, साधु के संग में। स्यान महत् सेवया विप्रा, भक्ति की शुरुआत कहाँ होती है, जब हम श्रद्धा के साथ साधु संग के, साधु का संग करते हैं, तो उनके संग में उनका सेवा करने से, महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्, तब हमको भक्ति में प्रोत्साहन मिलता है, भक्ति का बीज मिलता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो उसके आगे है, श्रण्वता स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी विदनोति सिरत्सता। तो साधु संघ में भजन क्रिया होता है, साधु संघ बोलते हैं ठीक है, भगवान की भजन करो, भक्ति करो, भक्ति के अलग अलग अंग बताते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो जब हम भजन क्रिया करने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, कृष्ण हमारे हृदय में जाके हमारे हृदय को शुद्ध बनाते हैं। हृदयस्थ अंतस्तो ही अभद्राणी विदनोति सुरत्सताम, तो कृष्ण जाके हमारे हृदय को साफ करते हैं। तो ये अगला स्तर है अनर्थ निवृत्ति, साधु का संग, साधु के संग में भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। तो ऐसे भक्ति करते रहेंगे तो क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। तो ऐसा भक्ति करते रहने से निष्ठा के स्तर पे आएंगे, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आएगा, जब हम नित्यम भागवत सेवया रेगुलरली भागवत का सेवा करते रहेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, हमने ये देखा है नित्यम भागवत सेवया का मतलब है दो चीज, भागवत का मतलब है पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। तो हमको भागवत भागवतम भी पढ़ना चाहिए और जो लोग भागवतम के अनुसार जीते हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे करने से निष्ठा की स्तर पर आते हैं। बाद में तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेतरेतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो ऐसा भक्ति करते रहने से निष्ठा के बाद हमको क्या मिलेगा, रुचि और आसक्ति। जब रजोगुण और तमोगुण, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये, रजोगुण और तमोगुण काम और लोभ कम होंगे तब क्या होगा, स्थितम सत्वे प्रसीदति, हम सत्वगुण में आएंगे। सत्वगुण में आएंगे मतलब हम रुचि और आसक्ति के स्तर पर आएंगे। उसके बाद आनंद की प्राप्ति होगी, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो ऐसे सत्वगुण में आने के बाद शुद्ध सत्व में, एवं प्रसन्न मनसो, ऐसा व्यक्ति पूरे तरह से प्रसन्न रहता है क्योंकि उसके हृदय में काम वासना नहीं है, लोभ वासना नहीं है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान का दर्शन मिलता है, मुक्त संगत से जाए थे, मुक्ति का स्तर पाता है। तो इस तरह से सुत गोस्वामी बोलते हैं सबको भक्ति का मार्ग में स्वीकार करना चाहिए, भक्ति के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए, इससे जितने भी हमारे अनर्थ हैं वो सब मिट जाएंगे। वृद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशय शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। हमारा जो कर्म के बंधन है वो टूट जाएंगे और हम आत्मा को और परमात्मा को साक्षात देख पाएंगे। ये सब कब होगा, जब हम भक्ति का मार्ग स्वीकार करेंगे। तो ये सब श्लोक सुत गोस्वामी बताते हैं हम सबको बताने के लिए, इसलिए सारांश है हर एक शास्त्र में भक्ति का मार्ग स्वीकार करना। तो इसका जो ये अध्याय का नेक्स्ट सेक्शन है 23-29, वो कोई बोलेगा ठीक है मैं कृष्ण की पूजा नहीं करता, बाकी देवताओं की पूजा किया तो चलेगा क्या? तो बोलते हैं कि नहीं, बाकी देवताओं को हम सम्मान दे सकते हैं, पर सब शास्त्र बताता है कि हमको कृष्ण की ही आराधना करना चाहिए। तो हम जो भी मार्ग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, अल्टीमेटली कृष्ण का आराधना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण वासुदेव ही सार है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। तो आप बाकी कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली आराधना विष्णु का ही होना चाहिए, वासुदेव का ही होना चाहिए, क्योंकि वासुदेव ही सारांश है हर एक चीज के। और एंड में ये सॉरी ये और एक इसमें गुणावतार पुरुषावतार का भी वर्णन आता है ये अध्याय के एंड में, क्योंकि शौनक आदि ऋषि ने उनका चौथा प्रश्न था कि भगवान के अलग अलग पुरुष अवतार के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि तीन तरह के पुरुष अवतार हैं, कारणोदक्षाई विष्णु जो महाविष्णु हैं उनसे जब सब ब्रह्मांड आते हैं, बाद में गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में और एक विष्णु लेटते हैं गर्भोदक सागर में, उनके नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, और शिरोदक्षाई विष्णु जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो इनके बारे में संक्षेप में बताते हैं क्योंकि शौनक आदि ऋषि का प्रश्न था, हम भगवान के पुरुष अवतार के बारे में जानना चाहते हैं। और फाइनली और एक प्रश्न था शौनक आदि ऋषि का कि भगवान क्यों आते हैं, अवतार क्यों लेते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर, दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक बोलते हैं, भगवान अवतार लेते हैं ताकि जो लोग भक्त हैं, जो शुद्ध सत्व में, इनका रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो हम आज शाम से विल कंटिन्यू फ्रॉम द थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर में क्या है। हरे कृष्ण।